डेजिग्नेशन बताइए।
दिव्या गुप्ता, परेश प्रवक्ता, टाइट लगना।
तो हमें आपको पूछना है, आपके यहाँ एकेडमिक रोल है या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल डाइट में?
दोनों।
तो आपके एकेडमिक रोल क्या होता है?
एकेडमिक रोल है जैसे कि क्लासेस टाइमली चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं देखना, कैरिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है वो जैसा है हमारा डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग क्लास चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो बच्चों का जितने प्रोग्राम्स होना है, कल्चर एक्टिविटी है, अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सपोर्टिव सुपरविजन पे जा रहे हैं शिक्षक, तो उनके भी उनका भी देख लेना।
अच्छा, और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल? एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे।
हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जैसे कि जनपद स्तर पर जो बेसिक की किताबें जो सब भेजी जाती हैं तो उनके सत्यापन में भी हम लोग जाते हैं, और प्राचार्य की ओर से जो हम लोगों को नामित किया जाता है, और जनपद स्तर पर कई समितियाँ गठित होती हैं तो उन समितियों में भी हम लोगों को भेजा जाता है। जैसे फर्नीचर खरीदने वाली समिति होती है यहाँ पे, उसमें भी हम लोग भेजा जाता है कि क्वालिटी देखें, हम लोग बुक्स की कंटेंट में देखें। अभी लखनऊ में किताबों का सत्यापन हुआ था, उसमें मुझे नॉमिनेट किया गया था, तो मैंने किताबों को देखा कि सही छपी हैं नहीं छपी हैं, क्या काम कोई कमी तो नहीं है, तो जितना भी मुझे समझ में आता है वो हम लोग देखते हैं।
आपके बैकग्राउंड क्या है मैम?
मेरा बैकग्राउंड एमकॉम है और मैंने एमएड किया है।
एमएड किया?
हाँ, और एमफिल एजुकेशन में ही मेरा है, और राज्यपाल द्वारा मुझे 2011 में कोई मेडल मिला था।
तो आप ये एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है, आप ये दोनों कैसे मैनेज करते हैं? कुछ चैलेंजेस हैं या आपको कुछ सपोर्ट चाहिए?
अरे अभी हम लोग ट्रेनिंग के रूप में है, अभी हम लोगों की ज्वाइनिंग की है तो हम लोग एज ए ट्रेनिंग के रूप में ले रहे हैं, और मुझे पहले से पढ़ाने का बहुत अनुभव रहा है, बीएड में मैंने लेक्चर लिए तो मुझे एकेडमिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और एडमिनिस्ट्रेटिव में इसलिए मुझे और अच्छा लगता है क्योंकि मेरा वो सपना है पूरा चलने का, इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी परीक्षा पास करके यहाँ आए, तो मुझे प्रशासनिक काम करना है। तो एकेडमिक और प्रशासनिक मुझे तो दोनों जो फील्ड मिला है वो तो मुझे लगता है मेरी कार्य क्षमता को और बढ़ाएंगे।
अच्छा, ओके। तो आपको नहीं लगता है आपको कुछ सपोर्ट चाहिए दोनों?
हाँ, सपोर्ट चाहिए।
कैसे सपोर्ट
जैसे कि विभाग में बहुत सारे अभी नियम हैं, और जैसे वित्तीय नियम है, उनकी हम लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे अभी कोई गलती हम लोग करें उससे पहले हम लोगों को उन नियमों के बारे में एक पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास कैसी फाइलें आएंगी, किस तरीके से हम लोगों को वित्तीय समस्याएं जो हम लोग हैंडल करेंगे, तो हम लोगों को उसका जैसे जैम पोर्टल है कैसे काम करता है, हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ये सूचनाएं होनी चाहिए जो टेक्निकल पॉइंट्स है।
हाँ, तो ये प्रोसेसेस का
ये हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है।
तो आपके ओपिनियन में आपके ओपिनियन ये दिया हुआ ओपिनियन गोल्स नहीं, आप डाइट का मेन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स या लक्ष्य क्या होना चाहिए?
डाइट का जो रोल होना चाहिए, डाइट जो है वो जिले का एक ऐसा सेंटर है कि जो हमारे बच्चे जनपद स्तर में पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे बहुत सारी अलग अलग फील्ड के होते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, तो डाइट एज ए रिसोर्स सेंटर है, और जितने टीचर्स हैं उनको अगर शिक्षण में कोई समस्या आ रही है, कोई पढ़ाने में उनको समस्या आ रही है, कोई लेसन प्लान बनाने में समस्या है, तो वहाँ पे हम डाइट की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, उस टीचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और उस टीचर के माध्यम से हम अपने जो टीचिंग का जो ग्रोथ है उसको हम जो आउटकम्स हैं उसको बढ़ाएँ। जैसे हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा है, हमारे विकलांग बच्चे बहुत सारे हैं, तो हम लोग कैसे काम करें? तो जैसे टीचर है, टीचर को एक सामान्य प्रशिक्षण मिला है, तो उसको हम उस बच्चे के विशेष रूप से कैसे वो पढ़ाए, एक जैसे बधिर बालक है नहीं सुन पा रहा है, तो उसमें उस समय वो कौन सी टेक्निक अपनाए जिससे कि वो बच्चे को पढ़ा सके, उसके आउटकम्स बढ़ सकें, तो यहाँ पर डाइट की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि यहाँ टीचर वो आ जाए, उस लेसन प्लान उस पाठ के बारे में यहाँ अपने डिस्कशन सबसे करे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर वो फील्ड में जाए, तो फिर वो टीचिंग बहुत अच्छा कर सकता है एज ए डाइट और इम्पॉर्टेंट रोल।
अच्छा अच्छा, तो ये न्यू नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके संबंध में आपको डाइट कहाँ है
उसमें तो और भी इम्पॉर्टेंट डाइट्स की बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी नेशनल एजुकेशन सिस्टम में जो कहा गया है क्षेत्रीय भाषाओं, हमारी नई शिक्षा नीति में कहा गया जो प्राथमिक शिक्षा हो वो क्षेत्रीय भाषाओं में हो, तो क्षेत्रीय भाषाओं में हो तो इसके लिए हमारी NCERT भी जो है वो भी हिंदी या इंग्लिश में होंगी, लेकिन हमारी जो यहाँ पे उन किताबों का अनुवाद किया जा सकता है क्षेत्रीय भाषाओं में और फिर उन अध्यापकों से कोरिलेट करके बच्चों को हम लोग और अच्छी टीचिंग कर सकते हैं।
तो ये आप ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तो देखा है आपने,
हाँ।
तो आपको क्या लगता है
स्टेट भी बहुत बड़ी चीज़ है, स्टेट में 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में हर एक जनपद की एरिया होता है और हर एरिया की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, क्षेत्रीय कुछ स्किल होते हैं छोटे क्षेत्र में, तो उन स्किलों पे भी हम टीचिंग कर सकते हैं, हर एक क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं और हर क्षेत्र का बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग है, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं।
तो आपको क्या लगता है आपके गोल्स जो आप आपको दिखता है डाइट के गोल्स करंट करिकुलम जो है वो फुलफिल कर रहे हैं ये गोल्स आप, और क्या कुछ कमी है उसमें या
कमी तो अभी जिस हिसाब से डाइट को डेवलप होना चाहिए अभी भी वो उस तरीके के डेवलपमेंट नहीं है, डाइट्स में और भी रिसर्च होने चाहिए, एक्सेल रिसर्च होने चाहिए, यूनिवर्सल जो हम लोग देखो बच्चों का नामांकन तो हम लोगों ने बढ़ा लिया, अब बच्चों की हमें क्वालिटी पे काम करना है और क्वालिटी के लिए जो डाइट है वो जिस पर्पस के लिए डाइट का जो गठन हुआ था वो पर्पस के लिए इसके रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है।
कैसे रिसोर्सेज?
जैसे यहाँ पे एक डाटा, मेरे हिसाब से एक डाटा एनालिसिस लैब होनी चाहिए, जैसे कि पूरे जनपद में जितने हमारे कितने बच्चे हैं किस एरिया के, उन बच्चों में हमारे विकलांग बच्चे कैसे हैं, विकलांगता की कैटेगरी क्या है, हमारे यहाँ लड़कियों का लेवल क्या है, हमको वो सब पता होना चाहिए, फिर हम लेसन प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे ना। अब मेरे पास यहाँ पर डाटा हो, मुझे पता हो मेरे इस विद्यालय में 5 बच्चे अगर विकलांग वो ब्लाइंड हैं तो हम कैसे उनके लिए लेसन प्लान बनाएं, उनके लिए उस टीचर को बुलाएं, उसको हम वो टेक्निक सिखाएं कि उन वो 5 बच्चों को भी वो
शिक्षा के लिए तक ला
सके, तो डाइट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है।
तो वेरी गुड मैम, तो आपको क्या लगता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट है, तो आपको लगता है डाइट ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं हम डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करना है,
बिल्कुल करना बहुत जरूरी है,
तो आपको क्या लगता है क्या ये डाइट्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट?
बिल्कुल कर सकते हैं,
तो क्या कैसे सपोर्ट चाहिए SCERT से या किसी और इंस्टीट्यूट से क्या?
जैसे हम यहाँ पे जैसे अगर इसको बहुत राहत प्लान बनाने की जरूरत है, जैसे हमारे जो प्रवक्ता हैं या हमारे हम लोग वरिष्ठ प्रवक्ता हैं या हमारा जो स्टाफ है हम लोग ही प्रशिक्षित नहीं हैं उस विशेष प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, हमारे यहाँ कुछ प्रवक्ताओं कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हों, अब हमें अनुदेशक तैयार करने हैं या हमको कोई विशेष फील्ड के टीचर तैयार करने हैं तो हमें और भी इसमें डाइवर्सिटी चाहिए, या फिर हम यहाँ पे विकलांग बच्चे हमारे यहाँ अगर जनपद में 3,000 विकलांग बच्चे हैं ब्लाइंड हैं, 3,000 बच्चे मेरे सर्वाइव कर रहे हैं ना, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, 3,000 बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको अगर हम 2 घंटे का भी अगर प्रशिक्षण स्पेशली दे दें उनको, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, भाई किसको ब्रेल लिप आती है, किसी को आती है? नहीं आती, हम लोगों में से भी कोई इस तरीके का कुछ परसेंटेज होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 से विकलांगता कैटेगरीज बहुत सारी हैं तो उनसे भी जो प्रशिक्षित लोग हैं वो भी डाइट में अटैच होने चाहिए, या हम लोगों के पास विशेषज्ञ होने चाहिए। जैसे किसी टीचर ने हमें रिक्वायरमेंट किया कि मुझे मैथ के इस चैप्टर को पढ़ाने में कोई समस्या आ रही, अब डाइट में उसने तो संपर्क कर लिया, अब मेरे पास विशेषज्ञ ही नहीं है तो हम कैसे उसको प्रशिक्षण देंगे। तो हमारे पास उसकी अवेलेबल होना चाहिए, हम जैसे ही मेरा टीचर के पास जैसे टाइम है हम उस विशेषज्ञ को बुलाएं और उसको उसकी प्रॉब्लम दोनों के सलूशन, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा प्लेस बन सकते हैं जहाँ पे जन सबकी समस्या सॉल्व हो, तब एजुकेशन बढ़ेगी।
तो एक आपको लॉन्ग टर्म में डाइट्स को देखना है, 10 साल आगे। ये NEP बोलते हैं हम सब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो है, तो हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मिलना
नहीं, मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है।
हाँ,
क्योंकि प्री प्राइमरी के लक्ष्य अलग होते हैं और हमारे पास अब नई एजुकेशन पॉलिसी में स्पेशली बात कही गई है प्री प्राइमरी 3 से 6 साल के बच्चों को हम बड़ी यूनिवर्सिटी में मर्ज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर डाइट से आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों को आसपास जोड़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी एक्शन रिसर्च टाइप का कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। हम लोग नए एक्शन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से अटैच कर दें, यूनिवर्सिटी के पास तो ऑलरेडी लोड है, फिर इस डिपार्टमेंट की तो और भी अनदेखी होने लगेगी, फिर हमारे बेसिक एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में तो और भी ध्यान नहीं देंगे, छोटे बच्चों पे कौन जाएगा 3 से 6 साल। आंगनबाड़ी केंद्रों में कितना प्रशिक्षण है, आंगनबाड़ी वर्कर अगर देखा जाए तो कितना प्रशिक्षण है, अगर यही अगर वो वेल ट्रेंड हो, बीएड का परसेंटेज चल तो रहा है, बीएड कितना हो रहा, क्या आउटपुट निकलना है। क्योंकि हम लोगों को एक जो नीड है आने वाले भविष्य की, हम लोगों को उस पर काम करना होगा। तो डाइट की इम्पोर्टेंस को और अलग रख के और इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है डाइट्स को। जो डाइट जो 1990 में जो डाइट जो कॉन्सेप्ट से आए थे वही कॉन्सेप्ट पूरा लागू नहीं हुआ। डाइट जो लाए थे वो लाए थे हम लोग जनपद में, जितनी जनपद स्तर पर प्लानिंग होनी है ना भाई, मऊ की रिक्वायरमेंट अलग है, हरदोई जनपद की रिक्वायरमेंट अलग है, हर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट अलग है, हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को लागू करें, ना कि हम ऊपर से थोपी हुई शिक्षा नीति लागू करें। हम मैकाले की नीति पे नहीं चल सकते कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी फिर वो निचले वर्ग में पहुँच जाएगी, अब उन लोगों को नीचे से ग्रोथ करने की ज़रूरत, हमें उन जो हमारे जो बच्चे बहुत लड़कियाँ हैं बच्चे हैं जो बहुत पिछड़ रहे हैं शिक्षा में, हमें उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। और यहीं पे ये डाइट की भूमिका और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे हम लोग माइक्रो लेवल पे जाके काम करें, यूनिवर्सिटी से अटैच कर देंगे तो इस विभाग की तो अवहेलना और हो जाएगी। प्री प्राइमरी में कौन ध्यान देगा, कौन बेसिक एजुकेशन पर ध्यान देगा, ये तो बच्चे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इन बच्चों
के। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपके हम ये तरह तरह के इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे ब्लॉक लेवल फिर स्कूल ऐसे, तो मुझे अब तो समझना है कि आपके क्या इंटरेक्शन होते हैं SCERT में, किससे आपके इंटरेक्शन।
SCERT में अभी तो हम नए हैं तो मेरा SCERT में कई बार जो मीटिंग हुई है जनपद स्तर पर तो उसमें शामिल होने का उच्च अधिकारियों के साथ अवसर मिला है, तो अभी तो हम समझ रहे हैं SCERT को, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरा भी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है।
तो आपको सपोर्ट कैसे, किस तरह के सपोर्ट मिलता है पेडागॉजी या करिकुलम में, SCERT से मिलता है कुछ।
हाँ, पेडागॉजी में पार्ट हम लोगों के स्तर पे तो नहीं, लेकिन हाँ प्रवक्ता मेरे लगातार वहाँ पे जाते हैं और वो लोग जो भी SCERT में नए पेडागॉजी पे काम होता है या SCERT कोई काम करती है तो उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है।
अच्छा, तो या प्री सर्विस एजुकेशन या DL Ed या इन सर्विस में आपको लगता है कुछ सपोर्ट चाहिए SCERT?
सपोर्ट तो चाहिए।
कैसे, किस तरह के
सपोर्ट? तो देखिए अभी जो DL Ed का कैरिकुलम है अब उनको आने वाली आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमको और तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम लोगों को अब वही पुरानी नीतियों पे नहीं चलना है ना, हमको नया भारत अगर निर्माण करना है तो नया हमको करिकुलम चाहिए जहाँ टेक्नोलॉजी और इन्वॉल्व हो। अब हमारे पास दीक्षा पोर्टल है, मिशन प्रेरणा है, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है और आने वाली है, तो इसको तो हम लोगों को करिकुलम में लाना होगा भाई। हमारे इन सर्विस हो या प्री सर्विस हो, दोनों में ही टीचरों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। 20 साल पहले जिसने अगर डीलेट किया हो और टीचर बना होगा तो अब उसको नई टेक्नोलॉजी में सर्वाइव करना दिक्कत है। अब डाइट यही भी इम्पोर्टेंस है, वो आए डाइट में, वो ऐप उसको दीक्षा ऐप नहीं आता, डाइट में आया प्रशिक्षण ले ले 2 दिन का, उसको वो ऐप आने लगे। उसको कोई टेक्नोलॉजी संबंधी समस्या है डाइट में, यहाँ पर रिसोर्सेज और हो हम उनको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होगी, तब भी हम फिर तब वो कहाँ जाएगा। तो डाइट है, डाइट में वो अवेलेबिलिटी।
तो आपके ब्लॉक लेवल पर क्या कैसे इंटरेक्शन है?
ब्लॉक लेवल पर जितने खंड शिक्षा अधिकारी हैं हमारे यहाँ मासिक समीक्षा बैठक होती है, उसमें आते हैं।
तो आप ही जाते हैं?
हाँ, हम लोग यहीं पे हमारे यहाँ सभागार है, तो यहीं पे हर महीने में होती है। तो वो लोग सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि ये समस्या, बहुत सारे ब्लॉकों की समस्याएं नगर में हैं, तो बताते हैं यहाँ पे हमारे प्रचार से समाधान करते हैं।
ठीक है, तो आप इंचार्ज है कुछ ब्लॉक्स के?
नहीं,
ऐसा नहीं है।
प्रवक्ता जो है उनको एक एक ब्लॉक का मेंटर बनाया गया
है, लेक्चरर्स। तो आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं ब्लॉक लेवल या?
डायरेक्ट नहीं करते, जैसे अगर कोई इशू आ रहा है, लेकिन मेरा काम हो जाता है अभी वर्तमान में जितने भी बीओ हैं या कोई और है, एसआरजी हैं, एआरपी हैं, मॉनिटर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उनकी मॉनिटरिंग हम लोग करते
हैं। मॉनिटरिंग करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आरपीस के
एआरपीज हैं, एसआरजी हैं।
हाँ।
तो अब मुझे लेटेस्ट अभी हफ्ते भर पहले ये काम अलॉट हुआ है, तो मैं वो है निपुण लक्ष्य ऐप, उसके तहत मॉनिटरिंग अब कर रहे हैं, जैसे कहाँ पे कैसे अटेंडेंस है टीचर्स की, कैसे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है वो देखने, किस ब्लॉक में सपोर्टिव सुपरविजन की क्या स्थिति, क्या होमवर्क दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, संदर्भ संरिष्ठा का कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो जो वो लोग रिपोर्ट देते हैं हमारे डायट के मेंटर एसआरजी एआरपी, तो उन मेंटरों को भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा तो नहीं वो लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ऐसे, वो भी हम लोग मॉनिटरिंग कर। अब लेकिन उसमें भी अब हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत है। अब मुझे ये लगता है कि डाटा देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, डाटा उनको क्या समस्या आ रही उस पर हम लोगों को प्रोजेक्ट वर्क फेस करना होगा, तब ये क्वालिटी इम्प्रूव होगी बेसिक एजुकेशन की।
तो आप डीओ के साथ कैसा रिलेशनशिप है या संपर्क?
यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डीओ का कोई पद नहीं है, हाँ डीओ नाम का कोई पद नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बेसिक
शिक्षा अधिकारी का नाम से है। और हमारे यहाँ जो मासिक समीक्षा बैठक होती है उसमें भी हमारे यहाँ
ये बेसिक शिक्षा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ब्लॉक लेवल पे होता है खंड शिक्षा अधिकारी।
आपके कोई इंटरेक्शन है?
हाँ बिल्कुल,
किसके किस?
जैसे बहुत सारी कमेटियाँ जब गठित होती हैं जम्पल स्तर पर, तो हम लोग उन कमेटियों में सदस्य होते हैं।
ओके।
और प्रतिभाग बराबर होते हैं।
ओके, तो सो ब्लॉक लेवल बीआरसी से आपका इंटरेक्शन?
बिल्कुल इंटरेक्शन है कि हमारे यहाँ जो प्रचार स्तर है वहाँ पे अगर कोई मीटिंग होती है तो 2 बीआरसी पे जाने का प्रावधान है, समझ जाते हैं।
तो आप जाते हैं? हाँ। आप वो मीटिंग से क्या क्या डिस्कस करते
हैं? मीटिंग में जैसे हमारे विभाग की जो योजनाएं चलती हैं, हमारे विभाग हर बार एक एजेंडा देता है, जैसे हमें निपुण लक्ष्य, पहले प्रेरणा लक्ष्य पे जैसे काम करना था, अब निपुण लक्ष्य पे काम करना है, हमारा मिशन कायाकल्प चल रहा है, तो किन विद्यालयों में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, तो मुझे कायाकल्प पे हम लोग बात करते हैं। फिर जैसे कायाकल्प के भी कई चरण होते हैं, कुछ विद्यालयों में हो चुका होता है, कुछ विद्यालयों में नहीं होता है, तो उनका हम लोग फीडबैक लेते हैं। फिर हम लोगों को क्या जैसे लेसन प्लान बनता है, इसको शिक्षक डायरी बोलते हैं, तो क्या टीचर हमारी शिक्षक डायरी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, उनका हम लोग फीडबैक लेते हैं। और हमारे विभाग में शिक्षक संदेशिका निकलती, जैसे कोविड का समय आया तो हमारे यहाँ बच्चों विद्यालय में नहीं है, तो काफ़ी शिक्षण स्तर नीचे हो गए, तो उस शिक्षण स्तर को बनाए रखने के लिए हम लोग संदर्भ संदर्शी का अध्ययन करते हैं, तो उनका फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा है हमारे शिक्षकों के द्वारा, ये हम लोग उन मीटिंगों में चर्चा करते हैं।
तो आपके रिलेशनशिप क्या होता है ब्लॉक रिसोर्स बीओ होता है?
हाँ, बीओ हमारी जैसे बीआरसी जो है वो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की एक सब यूनिट के रूप में काम करती है। जो जनपद स्तर पे हम आम लोग काम करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वैसे बीआरसी जो है वो ब्लॉक लेवल पे प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है टीचरों के, जो टीचर जो है जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है, उसको बार बार जनपद स्तर जनपद में आना यानी डाइट में आना और प्रशिक्षण लेना उसके लिए कठिन हो सकता है। हो सकता है बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो, वो अपने बीआरसी पे अपने पास में जाके उसके प्रशिक्षण ले सकती है या कोई समस्या है अपना समाधान करा सकती है। तो इसलिए भी जैसे उसको बुक्स चाहिए अपने विद्यालय की, तो अपने बीआरसी लेवल पर जाके अपने विद्यालय के लिए बुक्स ले ले, टीचिंग मटेरियल चाहिए, अब वो डाइट आए 40-50 किलोमीटर आए, वो शिक्षण उसका स्कूल बंद रहेगा, शिक्षक प्रभावित होगा, तो वो अपने बीआरसी लेवल पर जो सूचनाएँ नहीं लेगा। और फिर जनपद पर इतना डाइट पर लोड नहीं आता, अगर हम 500 लोगों को एक बार प्रशिक्षण देंगे तो लोड आएगा, तो ये अगर हम इस लोड को हम अपने बीआरसी लेवल पर बांट देते हैं तो प्रभावित होगा।